नामक जो शास्त्र है उसके हमने दो श्लोक का अर्थ तो देखा था। आज जो तीसरा श्लोक है उसके पृष्ठ 12 नंबर पर हमने टीका देखी है। उसके पहले हम 3 नंबर का श्लोक पढ़ लेते हैं दोबारा, ताकि हमें पता लगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये पृष्ठ होगा शुरू का, शालिनी नामक 5 नंबर पेज है, नहीं नहीं 5 नंबर पेज पर, हाँ तीसरे नंबर का जो श्लोक है शुरू करो।
सिद्धांतोद्ध श्रीधवं सिद्धसेनं तर्काब्जार्कं भट्टपूर्वाकलंकं शब्दाभिन्दुं पूज्यपादं च वन्दे तद्विद्याढ्यं वीरनन्दिं व्रतीन्द्रम्।
श्लोकार्थ पढ़ लेता हूँ। उत्तम सिद्धांत रूपी श्रीनापति सिद्धसेन मुनिन्द्र ने तर्क कमरना सूर्य भट्ट अकलंक मुनिन्द्र ने शब्द सिंधुना चंद्र पूज्यपाद मुनिन्द्र ने अने तद्विद्या थी एटले सिद्धांत आदि त्रणेना ज्ञानती समृद्ध वीरनंदी मुनिन्द्र ने हूँ वंदु छू। अभी यहां पर जो कुंदकुंद आचार्य भगवान है वो 4 मुनियों को नमस्कार कर रहे हैं। उसमें से एक तो सिद्धसेन है, दूसरे अकलंक मुनि है, तीसरे पूज्यपाद है और चौथे वीरनंदी है। तो इन मुनियों के अलग अलग तरीके से उन्होंने उनके विशेषण भी बताए हैं कि जो श्रीनापति, श्री यानी लक्ष्मी, ये विद्या लक्ष्मी जिनके पास है, सिद्धांत रूपी जो लक्ष्मी है, उनके जो पति यानी उनके जानना जानने वाले, उनके सर्वे सर्व, हाँ सब, हाँ वो सिद्ध सेन और तर्क कमलना सूर्य यानी सूर्य, अभी वो तो आगे हम देखेंगे। तर्क में जो बहुत एक्सपर्ट है ऐसे जो भट्ट अकलंक देव और शब्द सिंधु यानी शब्द सागर जो है वो कैसे हैं, अभी ये सारी बातें आगे आने वाली इसलिए मैं डिटेल में नहीं बोलता हूं। वो ऐसा बताना चाहते हैं कि चंद्र के कारण से जैसे सूर्य में उछाल आता है, सागर में, सूर्य में नहीं, सागर में उछाल आता है, ऐसे ही शब्द सिंधु जो है, शब्द रूपी सिंधु यानी सागर, वो पूज्यपाद मुनिन्द्र के कारण से उसमें उछाल आ जाता है, वैसा वो सब बताएंगे। और तद विद्या के जो समूह है उनके समृद्ध है उनसे, वे है वीर नंदी, इन चारों को नमस्कार कर रहे हैं। इसकी बात हम पेज नंबर 12 पर देखेंगे। हाँ जी, आगे आएगा श्लोक नंबर 3। हवे गुरु ने वंदन करे छे, जो श्री पद्म प्रभ मलधारी देव महामुनिवर संत छे। अभी यहां तो मैंने गलती से बोला था कि कुंद कुंद आचार्य नमस्कार करते, यहां तो पद्म प्रभ मलधारी देव नमस्कार करें, क्योंकि उनके अभी उनके मंगलाचरण चल रहे हैं। अभी तो हमने नियमसार को शुरुआत ही नहीं किए। श्री पद्म प्रभ मलधारी देव महामुनिवर संत छे, ते पोताना गुरु ने वंदन करे छे, अने साथे साथे बीजापन जे गुरुपदे छे ते बधाने वंदन करे छे, कहे छे उत्तम सिद्धांत रूपी श्रीना पति सिद्धसेन मुनिन्द्र ने, अर्थात उत्तम सिद्धांतो जेमने सिद्ध प्रसिद्ध कर्या छे, सिद्ध एटले प्रसिद्ध कर्या छे, एवा सिद्धसेन मुनिन्द्र ने वंदे, एटले हूँ वंदू छू। हवे आ वाचीने कोई अज्ञानी एम कहे छे के जो श्वेतांबरमां सन्मति तर्कना रचयिता जे सिद्धसेन थया छे तेने आई वंदन करे छे, पन भाई एम नथी, आ तो दिगंबर संत श्री सिद्धसेन के जेवो उत्तम सिद्धांत रूपी लक्ष्मीना स्वामी हता एवा मुनिन्द्र सिद्धसेन ने आई वंदन करे छे। हा हा, वंदन करनार दिगंबर संत महामुनिवर छे, तेवो बीजाने केम वंदन करे, बीजाने एटले अन्य धर्मीय ने, अन्य मती ने, जे साचा मुनि होय एमने तो करे, पण जे मुनि नथी एवाने न करे। एटले ए लोको जे कहे छे ने के अमारामां कोई सिद्धसेन जे हता एमने नमस्कार कर्या, तो ए कहे के जेवो उत्तम सिद्धांत रूपी लक्ष्मीना स्वामी हता एवा मुनिन्द्र सिद्धसेन ने आई वंदन करे छे, आई वंदन करनार दिगंबर संत महामुनिवर छे, तेवो એ પોતે સ્વતા મહામુનિવર છે, કોણ? પદ્મપ્રભ મલધારી દેવ, એ બીજાને કેમ વંદન કરે? આ હા, જગતને આકરો પડે એવો માર્ગ, પણ બાપુ સત્ય તો આવવું જ હોય ને, આ સત્ય છે, સમજાણું કાંઈ? હવે કહે છે કર્કકમળના સૂર્ય ભટ્ટ અકલંક મુનિન્દ્રને હું વંદું છું। શું કીધું? કે તત્વાર્થ રાજવાર્તિકના રચયિતા ભટ્ટ અકલંક દેવ મહામુનિવર થયા, થઈ ગયા, તેવો તર્કરૂપી કમળને પ્રફુલ્લિત કરવામાં સૂર્ય સમાન હતા। એકાદ કોપી હૈ કિનકે પાસ? જરા દે દેના ઉધર। आपको दी थी ना एक किताब, आपको एक किताब दी थी ना कल, यही छोड़ के गए थे। देखो भाई, जिनके पास जिनकी कॉपी दी होगी वो रोज यहां लाए, घर में तो ले जाना ही है, और उसके ऊपर अपना नाम लिखे, समझो बाय चांस यहां रही गई तो किसी को देने में काम आएगी, क्योंकि अभी रोज लोग बढ़ रहे तो नई नई कॉपी तो आने में से रही, क्यों लानी है? हाँ हाँ बोलते चलो। हाँ, क्या हो गया? हवे कहे छे तर्क कमलना सूर्य, अभी जो अकलंक देव है उनको तर्क कमलना सूर्य ऐसा उनको विशेषण लगाया। मुनिन्द्र ने हूं वंदु छू, शूं की दू, तत्वार्थ राजवार्तिक ना रचयिता भट्ट अकलंक देव મહામુનિવર થઈ ગયા, તેવો તર્કરૂપી કમળને પ્રફુલ્લિત કરવામાં સૂર્ય સમાન હતા। આહા, આવા મહાન સમર્થ મુનિવરને આઈ વંદન કરે છે। વળી કહે છે શબ્દ સિંધુના ચંદ્ર પૂજ્યપાદ મુનિન્દ્રને હું વંદું છું। पूज्यपाद स्वामीए तत्वार सूत्रनी सर्वार्थ सिद्धि नामनी टीका रची छे। आ सर्वार्थ सिद्धि मा जाने शब्द सिंधु उछड़ियो न होय। जेम पूनम नो चंद्र प्रकट थता दरियो उछड़े तेम चंद्र समान पूज्यपाद स्वामी ना निमित्ते सर्वार्थ सिद्धि मा शब्द सिंधु उछड़ियो छे। तेथी कहे छे शब्द सिंधु ना चंद्र अर्थात शब्द सिंधु ने उछाड़वामा चंद्र समान एवा श्री पूज्यपाद स्वामी ने हूँ वंदु छू। ये ख्याल में आता है ना भाई, क्या बताना पड़ेगा? हवे कहे छे तद विद्या थी समृद्ध वीरनंदी मुनीन्द्र ने हूँ वंदु छू। आहा जे उत्तम सिद्धांत रूपी श्रीना पति पण छे तर्क कमरना सूर्य भट्ट अकलंक दे जेवा पण जे छे अने शब्द सिंधु ना चंद्र पूज्यपाद जेवा पण छे। आहा एवा मारा गुरु श्री वीरनंदी मुनिंद्र ने हूँ वंदु छू। आम श्री गुरु ने विनम्रपणे भक्ति थी वंदन करू छू। हवे परमागम श्री नियमसार मा अधिकार मूल गाथा शुरू करता पहला मांगलिक ना काव्यो कहे छे तेमा हवे टीका करवानी शुरुआत केम थई तेनी वात करे छे। अभी श्लोक चौथा हम देखते दोबारा, पेज नंबर 5 निकालिएगा। अनुष्टुप
अपवर्गाय भव्यानां शुद्धये स्वात्मनः पुनः वक्षे नियमसारस्य वृत्तिं तात्पर्यसंज्ञकाम्।
श्लोकार्थ भव्योना मोक्षने माटे तेमज निज आत्मानी शुद्धि ने अर्थे नियमसारनी तात्पर्य वृत्ति नामनी टीका हूँ कहीश। देखो क्या कह रहे हैं कि ये टीका रचने का मूल उद्देश्य क्या है? तो कहते हैं निज आत्मानी शुद्धि ने अर्थे, यानि मेरे आत्मा में अधिक अधिक शुद्धि बढ़े इसके लिए और भव्य जीवों के मोक्ष ना माटे। तो भव्य जीवों में कौन कौन आए? स्वयं आए कि नहीं? वो मुनिराज स्वयं जो लिख रहे हैं वो मुनि है तो भव्य होंगे ना। तो ऐसा लगता है कि भव्यो ना मोक्ष ना माटे, यानी ये पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसमें स्वयं भी गर्वित है, दूसरों का भी भला हो तो उनमें उनके कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन और क्या लिखते? तेमज निज आत्मा ने शुद्धि ने अर्थे। तो मूल उद्देश्य तो स्वयं के शुद्धि के लिए है। नियम सारणी तात्पर्य वृत्ति नामनी टीका हूँ कहीश। अब पेज नंबर 13 पर आइए, श्लोक 4 श्लोकार्थ पर नु प्रवचन। जो नियम सार सिद्धांत शास्त्र छे, यहाँ सिद्धांत की बात बताई है। भगवान श्री कुंदकुंदा आचार्य देवे तेनी रचना करी छे नियमसार एटले मोक्षनो मार्ग। नियम अने तोनो सार तेनी टीका हूँ शा माटे करू छू ते वात हवे टीकाकार श्री पद्मप्रभ मलधारी देव कहे छे। कहे छे अपवर्गाय भव्यानाम भव्योना मोक्षने माटे। आहा जे लायक भव्य प्राणियों छे तेमना परम सुखनी प्राप्ति रूप जे मोक्ष छे तेने माटे हूँ टीका करूं छू। अभी भव्य किसको कहना जानते हैं भाई? भूपेन भाई भव्य किसको कहना? रसीला बेन आप जानती हैं भव्य किसको कहना और अभव्य किसको कहना? नहीं जानती है? तो पूछती क्यों नहीं है? पूछना चाहिए कि भाई ये किसके लिए बात हो रही है। हाँ जया बेन आप जानती है ना? वही भूली जाओ तो जेटलू नथी भूलिया एटलू क्यों? हाँ हमको तो लगता है ये भव्य के बारे में क्यों बताना, क्योंकि हमारे सारे सीनियर लोग ऐसे नाराज होते हैं क्या ये छोटी छोटी बात पे बीच में अटकते हैं, क्या करें? सबको साथ में लेके जाना है ना, मोक्ष में सामूहिक कॉम्बिनेशन होगा तो जल्दी एडमिशन मिलती है। वो क्या ग्रुप बुकिंग होता है ना, हाँ संसारी ने अभव्य केवा। अच्छा प्रतिभा बेन आप जानती हैं? हाँ और अभव्य, हाँ बहुत अच्छा, उन्होंने मराठी में क्या बोला समझिए आप। अच्छा आप जो समझती है बोलो, भव्य को किसको कहते हैं? बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है अभी आगे कल देखो। भव्य उसी को कहेंगे कि जो मूल में तो मोक्ष प्राप्त करने की क्षमता योग्यता जिसमें है, अब वो तो आगे की बात है, तो उसके पहले जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता धरता है रखता है उसको भव्य कहते हैं। और जिनको कुछ भी होवे तब भी उनको कभी सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं होगा और ना मोक्ष प्राप्त होगा, ऐसे जीवों को अभव्य कहते हैं। ख्याल में
यहाँ लिखा ना शब्द, भव्य के लिए क्या शब्द लिखा है देखो पढ़ो।
लायक भव्य प्राणियों छे,
जे लायक छे ने भव्य छे।
लायक यानी किस में लायक?
मोक्ष प्राप्ति में,
पैसा कमाने में नहीं। हाँ जी हाँ, सम्यक्त्व प्राप्त करने के लायक या मोक्ष प्राप्त करने के लायक जो जीव है। अभी उसमें और भी बहुत डिटेल्स है, तो वो भव्य कैसे कैसे उसकी यहाँ चर्चा नहीं है। भव्य किसको कहना ये पहले हम समझ लिए, तो भव्य उसी को कहेंगे कि जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति कर सकने के लायक है। तो ऐसे जे लायक भव्य प्राणियों छे तेमना परम सुखनी प्राप्ति, तो परम सुख की प्राप्ति कैसे होगी? लॉटरी लगने से हा? चंद्रिका बहन कैसी परम सुख की प्राप्ति होगी? चंद्रिका बहन है ना, दूसरी है हमारी चंद्रिका बहन, तो उधर है कोई बात नहीं। तो अभी यहाँ चंद्र की बात आई ना, वो उससे उछलता है वो समुन्दर, तो चंद्रिका बहन आ गई है। चलो देखो क्या बात है, तो यहाँ ये कह रहे हैं कि परम सुख की प्राप्ति स्वरूप क्या है। परम यानी उत्कृष्ट सुख, अल्टीमेटम सुख, परम सबसे बढ़िया वो कौन सा है? अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति मोक्ष में होती है, और वह सुख की प्राप्ति रूप जे मोक्ष है तेना माटे हूँ टीका करूं छू। तो ये भव्य जीवों के लिए और स्वयं के उन्नति के लिए, स्वयं के निज भलाई के लिए ये कह रहे कि मैं यह टीका रच रहा हूं। अपवर्ग यानी जो अपवर्ग यानी मोक्ष, पंचम गति है। वड़ी शुद्ध स्वात्मनः पुनः तेमज निज आत्मानी शुद्धि ने अर्थे हूँ आ टीका करो छो। आहा हा टीकाना कड़मा मारू, टीकाना काड़मा मारू लक्ष्य स्वभाव सन्मुख रहेशे, स्वभावना घोलन में रहेशे अने तेथी शुद्धि थशे। लियो आ टीका करवानु प्रयोजन कोई ख्याति लाभ पूजानु प्रयोजन नथी। कि मैं लिखूं तो मुझे अमेरिका से ऑर्डर आवे, ख्याति लाभ पूजा के लिए नहीं। अभी भाई साहब लेटर लेके आए, कौन? हमारे पिनांग जी। हाँ तो क्या वो अमेरिका से किसी ने 1200-1500 किताबें मांगी अपनी, तो ख्याति लाभ पूजा के लिए हमने किताब लिखी ऐसा नहीं बोल रहे। कौन? पद्म प्रभु मलधारी देव। वो तो कहते हैं निज आत्मा नि शुद्धि ने अर्थे। चलो अभी वैयक्तिक बात नहीं बोलना, क्या कह रहे देखो। आ टीका करवानु प्रयोजन कोई ख्याति लाभ पूजा नु प्रयोजन नथी, निजात्मानी शुद्धि अर्थेज आ टीकानी रचना छे। श्री अमृतचंद्राचार्य देवे पण आ शैली लीधी छे। समयसारना त्रीजा कळशमां श्री अमृतचंद्राचार्य कहे छे, आ समयसारनी व्याख्या थी ज मारी परम विशुद्धि थाओ। देखो जो वीतरागी संत होंगे वे तो वीतरागता कैसी बढ़ेगी, किस कारण से बढ़ेगी, उसके लिए वो ये सारा जो कुछ उनका जो क्रियाकलाप होगा, उनके जो थिंकिंग होगी, उनके सारे प्रयत्न होंगे, तो वो उसके लिए रहते हैं ख्याल में। तो वो वहां पर भी उन्होंने किन्होंने अमृतचंद्राचार्य ने समयसार में लिखा था, मतलब समयसार कलश में, कि ये समयसार की व्याख्या होने से मेरी परम विशुद्धि, परम यानी उत्कृष्ट विशुद्धि यानी मुझे मोक्ष प्राप्त हो। वे वास्तव में हर अंतर मुहूर्त में तो अपने स्वरूप में लीन होते हैं, लेकिन उतना बाहर आना भी उन्हें सुहावता नहीं है। क्योंकि हमने ऐसा भी देखा है कि मान लीजिए कि एक दिन के 24 घंटे हैं, तो वो अंतरंग में जो लीनता है उससे डबल काल वो बाहर में रहते हैं। मतलब ऐसा आवर्स में गिनेंगे तो 24 घंटे में से 8 घंटा अंतरंग शुद्धि में है, मतलब शुद्धोपयोग में है, और 16 घंटा बाहर। तब वो भी बात उनको नहीं रुचती, नहीं अच्छी नहीं लगती है। वो चाहते हैं कि क्यों न मैं अंतर मुहूर्त अपने स्वरूप में लीन हो जाऊं और साक्षात सर्वज्ञता प्राप्त होकर मोक्ष चला जाऊं। तो वो कह रहे हैं कि वही शैली यहां पर उन्होंने बताई। उन्होंने क्या लिखा, निज आत्मानी शुद्धि अर्थे शुद्धे स्वात्मनः पुनः, ऐसा लिखा ना। और वैसी वही बात वो समयसार की टीका रचते हुए अमृतचंद्राचार्य देव लिखते हैं कि मारी परम विशुद्धि थाओ, आहा हा भव्यो ना मोक्ष माटे तेमज निज आत्मानी शुद्धि अर्थे नियमसारनी मोक्ष मार्गनु कथन करनार आ परमागमनी तात्पर्य वृत्ति नामनी आ टीका हूं कहूं छू। देखो यहां पर इन शॉर्ट इस नियमसार में कौन सी बात आने वाली है वो इन्होंने यहां इंडिकेट कर दी। क्या लिखा देखो, तात्पर्य वृत्ति ए टीका नून सॉरी क्या कहते हैं, पहली लाइन फिर से पढ़ता हूं, भव्योना मोक्षना माटे तेमज निज आत्मानी शुद्धिना अर्थे नियमसारनी। तो नियमसार क्या है, मोक्ष मार्गनु कथन करनार आ परमागमनी। तो मोक्ष मार्ग का कथन किस में है, तो कहते हैं नियमसार में। तो मोक्ष मार्ग कैसा हासिल करे वह बात यहां इसमें लिखी है। तो तात्पर्य वृत्ति नाम निया टिका हूं कहूं छू, यानी देखो गुरुदेव की तो ऐसी शैली है कि बीच बीच में जो पूरी बात है वो अंदर छोड़ देते हैं, उसमें से बराबर अपने को खींच के लेना चाहिए कि नियमसार में क्या है क्या है। तो कहते हैं मोक्ष मार्ग नु कथन करना रू आ शास्त्र छे, अभी पहले आया था सिद्धांत शास्त्र छे, पहले लाइन में लिखा देखो जो आ नियमसार सिद्धांत शास्त्र छे। अभी यहां कह रहे हैं कि वो नियमसारनी एटले मोक्ष मार्ग नु कथन करनार आ परमागमनी। तो ये परमागम में क्या है, परमागम है, उसमें क्या है, मोक्ष मार्ग कैसा प्राप्त करे उसकी विधि उसका प्रोसेस इसमें बताए। तात्पर्य वृत्ति नाम निया टीका हूं कहूं छू, तात्पर्य वृत्ति ए टीका नु नाम छे। तात्पर्य वृत्ति एटले शू, तो तात्पर्य प्लस वृत्ति एटले तात्पर्य। शू तात्पर्य, के जे सारभूत केवू छे तेनी तेनु वृत्ति नाम परिणमन परिणाम थाय एवी आ टीका ते हूं कहीश एम कहे छे। अभी यहां उन्होंने तात्पर्य वृत्ति का भी अर्थ हमें समझाया है, कहते हैं कि जो सारभूत है वह कहना और उसके अनुसार परिणमन भी जो हो जाए, तात्पर्य वृत्ति। अभी श्लोक 5 फिर से दोबारा पेज नंबर 5 पर आए, 5 ही है ना, पांचवा नंबर।
गुणधर गणधर रचितम श्रुतधर संतानतस्तु सुव्यक्तम परमागमार्थ सार्थम वक्तुम अमुम केवयम मंदा।
श्लोकार्थ पेज नंबर 6 पर वही ગુણના ધરનાર ગણધરોથી રચાયેલા અને શ્રુતશાસ્ત્રોની શ્રુતધરોની પરંપરાથી સારી રીતે વ્યક્ત કરાયેલા આ પરમાગમના અર્થ સમૂહનું કથન કરવાને અમે મંદબુદ્ધિ તે કોણ. દેખો કિતની વિનયતા હૈ, યાને વો એસા કહે રહે કે જો ગણધરોને ગુણના ધરનાર ગણધર ઉનસે જો બાત રચાઈ હૈ, ઉન્હોને જો લિખી હૈ ઓર શ્રુતધરોની પરંપરાથી સારી રીતે વ્યક્ત કરાયેલા આ પરમાગમના અર્થ સમૂહને કથન કરવાને, એટલે ઇતના જો ગણધરો સે ચલતી આવી હોય જો બાત હૈ ઓર જો અચ્છી તરહ સે જો વ્યક્ત કી ગઈ હૈ ઉસકી ટીકા કરને વાલે હમ કોણ મંદબુદ્ધિ કેસે, મતલબ ક્યા કરે કૈસા કર સકેંગે ફિર ભી લિખને કા સાહસ કરતે હૈ. સાથ किधर है गुणधर, किधर लिखा गुणधर गण, ये गुणधर यानी वही समझ लेना कि जिनके व्यक्त पर्याय में जो गुणों की जो पर्याय सही रूप से स्वभाव रूप से जो परिणत हुई है वो गुण के धर यानी गणधर ही ले लो. गुणना धरनार गणधरो थी रचायला आया ना श्लोक में, श्रुतधर यानी जो बारह अंक की रचना करते हैं वो द्रव्य श्रुत. हाँ दोनों ले सकते हैं आप. देखो गणधर भी है और बाद में श्रुतधरों ने, यानी वो श्रुतधर यानी जो गणधर है वो रचना करते हैं और श्रुत के लिए वो जानते हैं, वो रचना नहीं करते. हाँ जी,
श्रुत के जानना जो परंपरा से जो अपने तक जो आए
श्रुतधर का अर्थ. हाँ देखो श्रुत, हाँ बारह अंगधारी जो होती श्रुत केवली को भी श्रुतधर कहेंगे, उसके बाद में जो आचार्य हो गए वो पूरा बारह नहीं जाने फिर भी वो आचार्य कहेंगे और उन्होंने परमागम अर्थ समूह ने करवाने लीधे जो बात हो गई वो. देखो अभी ये जो अब पेज नंबर 13 पर श्लोकार्थ है उसमें शायद वो बात आएगी. जो श्री पद्म प्रभ मलधारी देव प्रचुर अतीन्द्र आनंदमा रहनारा छठा सातमा गुणस्थाने झूलता एवा महामुनिवर दिगंबर संत हता, तेवो पोते आई कहे छे के आ टीकानो रचनारो पूते कोण के वयम मंदाहा एम केम किनू केम के आ टीकाना अर्थो तो गुणना धरनारा गणधरोती रचायेला छे. पाठ छे ने अंदर ગુણધર ગણધર રચિતમ, તેથી કહે છે આ અર્થો મેં ઘરના કર્યા છે એમ નથી. હા હા, ટીકાનો આવો તો પ્રબળ આધાર આપે છે, પણ શું થાય અજ્ઞાની માને નહીં હઠ છોડે નહીં. આહા હા, ભગવાનના મુખકણમાંથી સૂત્રો એટલે અર્થ નીકળ્યા છે અને ગણધરોએ તે સૂત્રો રચ્યા છે, તે સૂત્રોમાં કહે છે આ અર્થ સમૂહ ભગવાન ગણધરોએ ભર્યો છે અને શ્રુતધરોએ પરંપરાથી સારી રીતે તે અર્થ સમૂહ વ્યક્ત કરાયેલો છે. શ્રુતધર સંતાનતા તું સુવ્યક્તવ્યમ એમ પાઠ છે ને. હા, ગણધરોથી માંડી પરંપરાએ શ્રુતધરો શ્રુતના ધરનારાઓ થયા છે, તેની પરંપરાના સંતોએ આ અર્થ સમૂહને સારી રીતે વ્યક્ત કર્યો છે અને તે પરંપરાએ પ્રાપ્ત થયો છે એમ કહે છે. શું કહે છે કે આ અર્થો સારી રીતે એટલે સમ્યક પ્રકારે વ્યક્ત કરાયેલા છે, કોઈ વાત ગુપ્ત રાખી છે એમ નથી. આહા હા, શ્રુતધરોની પરંપરામાંથી સારી રીતે વ્યક્ત કરાયેલા આ અર્થો છે, તે એકલા મારા કરેલા અર્થો છે એમ નથી. આ તો આચાર્યોની પરંપરાએ પ્રાપ્ત થયેલા અર્થો છે. સમજાય છે કાંઈ? ખ્યાલમાં આવ્યા? तो जो श्रुत केवली होंगे वो भी तो आचार्य हो सकते हैं कि नहीं? और ये तो बात सही है कि जो पहले पहले जो 12 अंक के ज्ञानी थे वो नहीं होते होते बाद में कम हो गए होंगे, लेकिन जो कुछ उपलब्ध है वो आया गणधरों के मार्फत और वो गणधरों को भगवान के द्वारा मिला हुआ है। आहा कहे छे आ परमागमना अर्थ समूह नो कथन करवाने एटले के परमागम श्री नियमसारना अर्थना समूह ने केवाने अमे मंद बुद्धि ते कोण। क्योंकि वैसा देखा जाए तो ये स्वयं कुंदकुंदा आचार्य भी कहां श्रुत केवली थे, वे भी तो आचार्य ही थे और उनके बाद में जो कुछ बात आई है वो भी आचार्यों के मार्फत ही आई है, तो उनको श्रुतधर कहने में आया है। क्या कहते हैं देखो, कहे छे आ परमागमना अर्थ समूह नु कथन करवाने एटले के परमागम श्री नियम सारना अर्थना समूह ने कहवाने अमे मंद बुद्धि ते कोण। हूँ टीका कहीश एम चौथा कलश में कहूं छे। हवे आई कहे छे अमे मंद बुद्धि वाला ते कोण के आ कही शकीए, ए तो पूर्वे गणधरोए अने आचार्योए जे अर्थो भली प्रकारे कहया छे ते आमा एटले टीका मा अमे कहवाना छे एम केवू छे। अभी उनको यही बताना है कि ये जो कुछ बातें हैं वो मैं अपने मन से बताए नहीं रहा हूं, जो अब तक परंपरा से जो चलती आई है वही बात मैं कहूंगा। हा हा आगर गणधरो अने श्रुतधरो श्रुतधर आचार्यो पासे अमे मंद बुद्धि छे। यानी उन्होंने जो गणधर जो है और पहले के जो उनके पूर्वाचार्य है उनके सामने में कुछ नहीं हूं यही बताना है। वक्तुम ममुम के वयम मंदाहा एम अमे मंद बुद्धि वाला ते कौन के आ कही शकीए, जो केटली निर्माणता निर्माण एटले मान रहित पणु। ये वक्तुम ममुम हुए ना, ओके जगह अ करना क्योंकि वो
या वक्तु के ऊपर अगर अनुस्वार नहीं होता तो एक साथ वक्तुम अमुम कह सकते थे। वक्तुम अमुम, अमुम यानी हम, अमुम अमुम यानी इसका वर्णन करने के लिए हम, हम यानी वयम मंदा
दोबारा फिर पेज नंबर 6 पर आइएगा। यह अनुष्टुप छठा नंबर का जो श्लोक है वो पढ़ेंगे।
इसमें अपने खाली अपने गुरु के ही यानी उसकी अधिकता नहीं कही है, जो पूर्वापार सर्वज्ञ से जो चलता आया है मार्ग, भले हमको हमारे गुरुओं ने बताया है फिर भी वो जो पूर्वाचार्य है उनको नमस्कार करते हैं, उनको पहले स्मरण करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं कहता कि मैं कहता हूं इसलिए ये सही है या मेरे गुरु ने कहा इसलिए ये सही है, यानी किसी व्यक्ति विशेष को यानी उन्होंने नमस्कार नहीं किया है, तो सारे ही पूर्वाचारों को स्मरण किया है। अभी हम हमारा ऐसा हो जाए ना, जिनके पास से हम सीखे उनकी बहुत महत्ता आती है और पूर्वों के आचार्यों को हम भूल जाते हैं, परंतु हाँ ये जो आचार्य स्वयं आचार्य थे जो नियमसार की टीका करने वाले कितने वो बुद्धिमान हो गए और भावलिंगी संत थे, फिर भी उन्होंने अपने जो गुरु वीर नंदी है ना उनके पहले ये अकलंग को याद किया, पूज्यपाद को याद किया, सिद्धसेन को याद किया, फिर गणधरों को याद किया, श्रुतधरों को याद किया।
ये पहले की ऐसी रीति थी कि वह कोई भी ऐसा नहीं कहता था कि यह हमारा माल है, ये तो साक्षात जिनेन्द्र भगवान से परंपरा से हमारे तक आया हुआ है। सबको अभी हमने प्रवचन सार में भी ऐसा ही पढ़ा ना, ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने प्रत्येकने, सारे अरंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सबको उन्होंने नमस्कार किया और इतना नमस्कार किया कि सबको साथ साथ में और सबको जुदा जुदा कोई रह न जाए। जैसे हमारे घर में शादी होती है तो हम सबको बुलाते हैं और भाई बोनू खादू भाई बराबर पेट भर के खाया, सबको पूछते हैं, खाना खाने बैठे फिर भी आ रहे साहब आराम से भोजन करना, क्यों कि भाई हमने आग्रह से सबको भोजन खिलाया। ऐसा हम देखते तो यहां पर भी, वहां तो रागी जीव है तब भी हम इतनी कालजी लेते और वितरागी जीव हा? वो क्या करेगा कि वह तो सबको यानी कभी कोई जिनके उनके ऊपर ऐसे उपकार है भले डायरेक्ट नहीं है परंपरा से आई हुई बात है फिर भी कहेंगे कि ये हमारे सारे हमारे उपकारक हैं और इसलिए सबको याद करेंगे। ये तो परिपाठी है, उसमें क्या बड़ी बात है, कोई एक व्यक्ति विशेष की महत्ता नहीं।
गुरुदेव भी स्मरण करते हैं ना, हम दिगंबर संतों के दासानु दास है ऐसा कहते थे, बार बार कहा है उन्होंने।
दिगंबर संतों ने तो सू के ऐसा बहुत बार बोलते थे, बिल्कुल सही है, ऐसा ही परिपाठी भी ऐसी है। छह नंबर पेज नंबर छह श्लोक नंबर छह आया आया डाबे हाथ को आया।
अस्माकं मानसान्युच्चैः प्रेरितानि पुनः पुनः परमागमसारस्य रुच्यामांसलयाधुना।
तथापि हमणा अमारु मन परमागमना सारनी पुष्ट रुचि थी फरी फरी ने अत्यंत प्रेरित थाय छे। वो क्या कह रहे थे कि मैं ऐसा मंदबुद्धि कौन के इसकी मैं कुछ टीका रचूं, फिर भी कहते हैं तथापि अभी हमारा मन परमागम का जो सार है उस सार से उनकी पुष्ट रुचि हुई है, उससे हमारी रुचि और बढ़ गई है और इसलिए बारंबार फरी फरी ने अत्यंत प्रेरित थाय छे। काय के लिए? टीका रचने के लिए। क्यों क्यों टीका रचते हैं कि हमारा भला नार्थ है ऐसा कह रहे हैं। ए रुचि थी प्रेरित थवाने लीधे तात्पर्य वृत्ति नामनी आ टीका रचाई छे। अब फिर से दोबारा पेज नंबर 14 पर आइए, श्लोकार्थ उपरनु प्रवचन श्लोक छठो जो पहला चौथा श्लोक मां कहूं के भव्यो ना मोक्ष ने माटे तेमज निज आत्मा नी शुद्धि अर्थे आ टीका रचो छू। एम बे कारण कया। अवे त्रीजू कारण कहे छे हमणा अमारू मन परमागमना सारनी पुष्ट रुचि थी फरी फरी ने अत्यंत प्रेरित थाय छे। एम के परमागमना सारनी अतिशय रुचि थी प्रेरित थवाने लीधे तात्पर्य वृत्ति नामनी आ टीका रचाय छे। टोटल कितने कारण बताए? तीन। कौन कौन से? हाँ, भव्यों ना अर्थे, हाँ भव्यों के मोक्ष के लिए और हाँ निज के शुद्धि के वृद्धि के लिए, और तीसरी बात क्या कही कि ये परमागम का सार देखकर हमें हमारी रुचि पुष्ट हुई और उससे हम और प्रेरित होकर उसकी रचना करने के लिए हम तैयार हुए। आहा हा नहीं अभी और रहेंगे ना। कहे छे हमारा मनमा शास्त्रनी टीका रचाय एम वारंवार विकल्प थई आवे छे। आहा परमागमनो सार जे मोक्ष मार्ग तेनी अति पुष्ट दृढ़ रुचि थवाथी अमारू मन तेनी टीका रचवा प्रति फरी फरी ने प्रेरित थाय छे। आनी टीका रचाय एम फरी फरी ने मन त्या जाय छे अने तेथी आ टीका रचाय छे एम कहे छे। आहा परमागमना सार प्रति केवी दृढ़ रुचि अने एनी टीका रचवा प्रति केवु दृढ़ मन। अमारू मन वारंवार एटले पुनः पुनः प्रेराता कहे छे आ टीका रचाय छे। आहा केटली लघुता केटली नरमाश ने केवी सरलता। एटले मायाचारी जराय नथी, सरलतानो अर्थ शो? मायाचारी जरा पण नथी, निर्माणता छे। अज्ञानी तो एक साधारण वात करे त्या तो फूलाईने केवा लागी जाय के अमे कहीए छे अमने आवडे छे आ अमारू छे इत्यादि। आई तो कहे छे के अमारा चित्तमा आ परमागमनो सार એ બહુ દૃઢપણે ઘૂંટાયા કરે છે કે અમને એની ટીકા રચાય એમ વિકલ્પ થઈ આવે છે, અને તો તેથી આ ટીકા રચાય છે. તો ટીકા રચાય છે એટલે કે પરમાગમના સારની પુષ્ટ રૂચિથી આવો વિકલ્પ થઈ આવ્યો છે, આવું મન થયા કરે છે, અત્યંત પ્રેરિત થાય છે, તો ટીકા રચાય છે. અન્યથા અમારે કાંઈ હેતુ નથી. સમજાણું કાંઈ? જુઓ ને, ગજબ કરી છે ને, એવી અલૌકિક ટીકા રચી છે. અમને મનમાં કોઈ વાર એમ થઈ જતું કે આની ટીકા જો કોઈ અમૃતચંદ્રાચાર્ય આની ટીકા જો શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ દ્વારા થઈ હોત તો? પણ જ્યાં જેનું નિમિત્ત જે હોય તે જ હોય ને. શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવને સમયસારની ટીકાનો વિકલ્પ થયો ને નિયમસારની ટીકા રચવાની પ્રેરણા ન થઈ. જ્યારે ટીકાકાર પદ્મપ્રભ મલધારી દેવનું મન નિયમસારની ટીકા રચવા પ્રતિ પુનઃ પુનઃ પ્રેરિત થયું, એ તો જેને જે જાતનો વિકલ્પ આવવાનો હોય તે જ આવે ને, આવી વાત છે. દેખો ક્યા ઇસકે અંદર ઉન્હોને ક્રમબદ્ધ પર્યાય કો ભી સિદ્ધ કર દિયા. પાંચો સમવાય ભી વહાં લાગુ હોતે હૈ. પાંચો સમવાય યાની ક્યા? કે જબ પાંચ સમવાય કોણ સે હોતે નરેનભાઈ? કિતને ડાલે આપ? છ સાત તો બતા દીયા આપને. હા, ઓર હોનહાર ઓર ભવિતવ્ય ભી એક હી હૈ. તો અચ્છા અચ્છા, તો કિતને બતાયા આપને? છ યા સાત? પાંચ. હા બેન, દેખા બાંજી તો મામા કઈ સાથ દેગી. છ બોલે. હા, કોઈ બાત નહીં. યે જો પાંચ કોઈ ભી કાર્ય હોતા હૈ, કાર્ય હોતા હૈ યાને જો કોઈ પર્યાય હોતી હૈ, તો એક સમય મેં એક દ્રવ્ય કી કિતની પર્યાય હોગી બેન? એક દ્રવ્ય કી એક સમય મેં કિતની પર્યાય હોગી? નહીં માલુમ. કોઈ બાત નહીં. ચંદ્રિકા બેન આપ જાનતી હૈ? હા, બ્રહ્મા તું બોલ. અરે વો ડિટેલ કિસને પૂછા? કિતની સંખ્યા બતાવો આપ? અનંત હૈ ના? ક્યુકે અનંત ગુણ હૈ, યે તો અભી બાત નક્કી હૈ કે અભી ઉસકો ભી બતાના પડેગા કૈસે અનંત હૈ. તો અનંત ગુણ હૈ તો અનંત ગુણો કી હર સમય એક એક પર્યાય હોગી કે નહીં હોગી? તો એક દ્રવ્ય કી અનંત પર્યાય એક સમય મેં હોગી. તો એસે દ્રવ્ય કિતને? અનંતાનંત. તો અનંતાનંત દ્રવ્યો કે અનંતાનંત ગુણો કે અનંતાનંત પર્યાય એક સમય મેં હોતી હૈ. તો હર પર્યાય મેં પર્યાય હોતી અને પરિણમન હોતા હૈ, કાર્ય હોતા હૈ. તો વો હર પર્યાય મેં યાને હર કાર્ય મેં પાંચ સમવાય લગતે હી હૈ. ખ્યાલ મેં આયા? પાંચ સમવાય ઓર ષટકારક ભી લગતે. અભી ઓર લંબાતા હું, ચલો ખુશ રહેના. યે અપના વિષય નહીં હૈ અભી. તો વો યે કહેના ચાહતે હૈ કે યે પાંચ સમવાય લગતે હૈ યાને કોઈ ભી કાર્ય હોતા હૈ તો યે પાંચ બાતે તો હોતી હૈ. સ્વભાવ હોતા હૈ. ક્યા ક્યા? સ્વભાવ હૈ, નિમિત્ત હૈ, નિયતિ યાને કાલ લબ્ધિ હૈ, હોનહાર હૈ, ઓર પુરુષાર્થ હૈ. ખ્યાલ મેં?
તો નિયમસાર કી ટીકા મેં કિસકા પુરુષાર્થ થા? પદ્મ પ્રભુ કા કે કુંદ કુંદ કા?
ક્યા ક્યા પૂછા? ફિર સે પૂછો.
નિયમ સાર કી જો ટીકા બની, અભી હમને દેખે ના પાંચ સમય લગતે હૈ, તો ઇસમે પુરુષાર્થ કુંદ કુંદા કા થા ટીકા મેં કે પદ્મ પ્રભુ મલધારી દેવ કા થા?
તું બોલો, તું બોલો. પદ્મ પ્રભુ મલધારી ઓર કોણ કહેતા હૈ? દૂસરે કિસી કા કોઈ અન્ય રાય હૈ ક્યા?
મિલિંદ ભાઈ ઓર કોઈ મત હૈ ક્યા?
हाँ देवेंद्र भाई आप बोलो। देखो टीका जो रची, अभी हम टीका रची यानी यहाँ लिखित रूप से समझते हैं, जो कुछ लिखित रूप से हुआ है उसमें पद्म प्रभु मलधारी ने हाथ तो हिलाया होगा कि नहीं।
स्वभाव स्वभाव में तो पुद्गल को लेना, पुद्गल का स्वभाव, शब्द रूप रचना हुई, निमित्त में इनको रखना है पद्म प्रभु मलधारी देव को, और बाकी जो सारी जो है अन्य चार समवाय वो पुद्गल में लगा देना। काल लब्धि भी पुद्गल में होगी, पुरुषार्थ भी पुद्गल में होगा, भवितव्य भी पुद्गल में होगा, स्वभाव में भी पुद्गल का ही स्वभाव होगा। तो जो पूर्व पर्याय नष्ट होकर नई पर्याय उत्पन्न होगी होगा पुरुषार्थ। अब जो होने योग्य ने वो शब्दों की रचना हुई वो हुआ भवितव्य, जिस समय में होना है उस समय हुई वो हुई उसकी काल लब्धि, ऐसे लेना उसमें। देखो जिस ऐसा लेना कि जिस जो द्रव्य स्वयं परिणमित हुआ है उसका पुरुषार्थ चलेगा।
अभी यहाँ पद्म प्रभु
ग्रंथ रूप कौन परिणमित हुआ है?
पुद्गल।
तो यहाँ उसका पुरुषार्थ चलेगा पुद्गल का, और पद्म प्रभु मलिधारी देव वे किस रूप परिणमित हुए?
राग नहीं नहीं रूप।
अभी उन वे किस रूप परिणमित हुए? हाँ विकल्प, लिखने का राग आया था उनको तो उस रूप वे परिणमित हुए। तो ये जाना किसकी पर्याय है वो उसका कार्य है। अभी हेतल बेन को नहीं समझेगा मगर बाकी लोगों का तो अभ्यास हुआ है यहाँ।
आप भले जबरदस्ती करो हाँ। लेकिन सबसे हाथ उठवाओ कि कार्य कारण रहस्य कितने जन ने पढ़ा है।
हाँ, हाथ उठाओ चलो अभी आधा पढ़ा है। देखो ये सबसे नई है, इन्होंने पूरा पढ़ा है और एक दिन में ले लिया, एक दिन में ही पूरा पढ़ लिया उन्होंने।
तो देखो मान लो 20 जने हैं और मैं तो समझता हूँ कि आप में से अनेकों ने उसमें पैसे भी दिए होंगे, लेकिन हमारा तो काम खत्म हो गया, पैसा दे दिया ना, पुस्तक आ गई ना, हमारी जवाबदारी थोड़ी है पढ़ने की, वो तो लिखने वाले की जवाबदारी है, वो पढ़े और लिखे, हमको क्या लेना देना है। क्यों तो आप भले 5 समय 25 बार बताओ कुछ नहीं समझ में, अरे क्रमबद्ध पर्याय ध्यान में नहीं आने वाली बात है, ख्याल में आया, फिर भी बताना तो चाहिए, उसमें कोई चिंता नहीं है भाई। बात तो ऐसी है कि यहाँ तो बात ये कह रहे हैं कि प्रत्येक पर्याय का कार्य, प्रत्येक पर्याय में जो हो रहा है वह भी नक्की है, निश्चित है। तो यहाँ गुरुदेव क्या बता रहे हैं कि हमें तो ऐसा विकल्प आया था कि इसकी रचना अगर अमृत चंद्राचार्य करते तो कितना बढ़िया होता था, लेकिन क्या हुआ उनके मन में ऐसे परिणाम ही नहीं आए, और बात ऐसी बनी कि ये जो पद्म प्रभु मलधारी देव है उनकी रुचि इतनी पुष्ट हुई और उनके हाथ से ये रचना हो गई। मान लो ये निमित्त का कथन है, रचना हुई तो कहते जब जो होना है सो होता है, तो इसके माध्यम से उन्होंने क्रमबद्ध पर्याय को भी स्पष्ट किया है। देखो फिर से पढ़ो ये लास्ट, आहा भगवान आत्मा तो शुद्ध चिन्ह मात्र एक ज्ञान स्वभावी छे। अभी आत्मा का क्या वर्णन किया, राग करे छे एम लख्या छे, शुद्ध चिन्ह मात्र एटले ज्ञाता दृष्टा एक ज्ञान स्वभावी छे, तेमा स्वभाव मा शास्त्रनी टीका रचू एवो विकल्प नथी, ए तो वर्तमान विकल्प थई आव्यो छे ने आ टीका रचाय छे, बाकी अमे तो ज्ञाता दृष्टा छे, आवो विकल्प थई आव्यो छे ने टीका रचाय छे, एना अमे तो ज्ञाता दृष्टा छे, आवी अंतर्दृष्टि छे मुनिवर्णी, ये मारी छे एम पर नथी कहता, मुनिवर्णी ए जारे लखे छे त्यारे पन एमने एम छे के हूँ ज्ञाता दृष्टा छू, उस समय भी उनको ऐसा नहीं लगता है कि मैं इस विकल्प का करता हूँ और लिखने धरने वाला मैं हूँ, वो तो ऐसा ही मानते भी है, समझते भी है, ज्ञान भी उनका ऐसा है कि यह जो राग आ रहा है उस राग का तो मैं केवल ज्ञाता ही हूँ, ये राग उठा रहा हूं ऐसा भी नहीं है, राग का कर्ता मैं हूं ऐसा भी नहीं है, ये जो राग आ रहा है उसका मैं ज्ञाता हूं बस, और उसके पहले क्या हो गया देखो, मैं जो बताना चाहता हूँ ऊपर से, ऊपर का पैराग्राफ है उससे थर्ड लाइन, पहले पहले जुओ ने इसे चालू कर दे, गजब करी छे ने कोई अलौकिक टीका रची छे, अमने मनमा कोई वार एम थई जतू कि आनी टीका जो अमृत चंद्राचार्य देवे द्वारा थई होत तो, पण जा जेनु निमित्त छे जे होय तेज होय ने, ये टीका रचने का कार्य हो तो निमित्त कौन है, तो पद्म प्रभु मलधारी देव श्री अमृत चंद्राचार्य देव ने समय सारणी टीका नो विकल्प थयो ने नियम सारणी टीका रचवानी प्रेरणा न थई। जारे टीकाकार पद्म प्रभु मलधारी देव नु मन नियम सारणी टीका रचवा प्रति पुनः पुनः प्रेरित थयुं, ए तो जेने जे जात नो विकल्प आववानो होय तेज आवे ने, तो ये जो राग का परिणाम जो उनमें आना था वो जिनके आना था उनमें ही आवे ना, ऐसा कहते हैं। तो राग का भी मैं करता हूँ नहीं, मैं सोच सोच के अच्छा पुण्य परिणाम करूंगा, हाँ पाप परिणाम छोड़ूंगा, ऐसा भी नहीं है। अरे उनके लिए तो ये तो एक पहले हमने पढ़ा था ना अभी, कलंक था शुभ परिणाम आना उनके लिए कलंक था, ऐसा कहते हैं। फिर भी वो आया उनके, और वो उन आने वाले राग को भी वो ज्ञाता थे, ऐसे अगले इसका हमने गलती से पढ़ लिया आगे का, उसमें भी ऐसा कहा कि वो राग के भी ज्ञाता दृष्टा थे। तो कह रहे हैं कि जे जातनो विकल्प आवानो हो तेज आवे ने आवी वात छे, तो ये आवी वात मा तो त्या क्रमबद्ध पर्याय नी सिद्धि थाय छे, क्योंकि आत्मा में अनंत गुण है और अनंत गुण के हर समय नया 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 परिणमन हो रहा है। वो जो परिणमन हो रहा है वो पांच समवाय के कारण हो रहा है, और वो जो होगा सो होगा, उसमें कोई भी आगे पीछे कभी भी कुछ नहीं कर सकता। ये जो है जो होने वाला है जो हुआ है और हो रहा है वो सारा केवली के ज्ञान में स्पष्ट झलक रहा है वर्तमानवत। तो इससे ही ये क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होती है। और आगे कहते हैं भगवान आत्मा तो शुद्ध चिन्ह मात्र एक न्याय स्वभावी छे, ज्ञान स्वभावी छे, तेमा स्वभाव मा शास्त्र ने टीका रचू एव विकल्प नहीं, स्वभाव में विकल्प ही होता नहीं है। ये तो वर्तमान विकल्प थी आए वो छे, अभी वो वैसा वर्णमन उनका हुआ है। ने आ टीका रचाय छे, बाकी अमे तो ज्ञाता दृष्टा छे, आवो विकल्प थी आए वो छे ने टीका रचाय छे, एना अमे तो ज्ञाता दृष्टा छे, अभी अंतरदृष्टि छे मुनिवर नी। तो मुनि तो ऐसा ही मानते हैं, जानते हैं और समझते भी है कि यह राग जो है वो राग का मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ।
अभी प्रवचन सार में आया था ना, क्रम से क्रम में आ पड़ता है, मुनियों को जो राग है वो क्रम में आ पड़ता है, करते हैं ऐसा नहीं है।
समझाणु का है, अब आ गया सातवें नंबर, फिर से छह नंबर के पेज पर आना,
सात नंबर का श्लोक,
सात नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। पंचास्तिकाय षट द्रव्य,
पंचास्तिकाय षट द्रव्य
अनुष्ठ ऊपर की च,
पंचास्तिकाय षट द्रव्य सप्त तत्व नमार्थका प्रोक्ता सूत्र कृता पूर्वम प्रत्याख्यानादि सत्क्रिया
अलम अलम अति विस्तरेण स्वस्ति साक्षात अस्मे विवरणाय। श्लोकार्थ कहते हैं सूत्रकारे पूर्वे पांच अस्तिकाय छह द्रव्य सात तत्व अने नव पदार्थ तेमज प्रत्याख्यानादि सत्क्रिया कहेल छे, अर्थात भगवान कुंदकुंदाचार्य देवे आ शास्त्र मा प्रथम पांच अस्तिकाय, ये सारा अभी लघु सिद्धांत प्रवेशिका ही आने वाला
है। नियमसार में तो सारी है,
नियमसार सिद्धांत
स्टार्टिंग में सारा वही है,
फिर क्या करें अभी, लोगों अच्छा को कंटाला आता है ना, तो हम वही वही ग्रंथ ढूंढ के लाते हैं जिसमें
नए लोग
पंचास्तिकाय लाओ, पंचाध्यायी लाओ, नियमसार लाओ, वही बात। अब हम क्या करें उसमें, उसी की बात आएगी। तो देखो क्या कहते हैं, सूत्रकारे पूर्वे पांच अस्तिकाय छह द्रव्य सात तत्व ने नव पदार्थ तेमज प्रत्याख्यानादि सत्क्रिया कहेल छे, अर्थात भगवान कुंदकुंदाचार्य देवे आ शास्त्र मा प्रथम पांच अस्तिका वगैरे अने पछी प्रत्याख्यानादि सत्क्रिया कहेल छे, अति विस्तार थी बस थाओ। ऐसा किसको समझा रहे, स्वयं को समझा रहे क्या, अभी मैंने इतने सारे मंगलाचरण में श्लोक लिख दिए, अभी कहते और विस्तार से बसता और विस्तार से बस, अर्थात आ विवरण जयवंत वर्तो
नमनाला घड़ी भरते नमनाला घड़ी भरते
अभी ग्रंथनी आदि मां नमस्कार करे। चलो आगे आगे आगे, अब ये पेज नंबर 15 पर आना दोबारा, श्लोकार्थ 7 ऊपर नु प्रवचन, सात श्लोक सात श्लोकार्थ ऊपर प्रवचन। संत मुनिवर श्री पद्म प्रभ मलधारी देव आमा एम कहे छे के सूत्रकारे सूत्रना रचनार भगवान श्री कुंदकुंदाचार्य देवे आ शास्त्र मा पूर्वे पांच अस्तिकाय, पहला काल द्रव्य सिवाय जीवास्तिकाय आदि पांच अस्तिकाय, छह द्रव्य काल द्रव्य सहित जीवादि छह द्रव्य, सात तत्व पुण्य पाप ने आश्रव मा अंतर्गर्भित करीने जीवादि सात तत्व अने नव पदार्थ आश्रव थी पुण्य पाप ने जुदा पाड़ी ने नव पदार्थ कया छे। अभी ये तो आपको एक्सप्लेन करने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं, सब जानते हैं, इसमें कोई खास बताने की जरूरत नहीं है। आ बधा पहला कया छे तेमज प्रत्याख्यानादि सत्क्रिया कहेल छे, मतलब पछी प्रत्याख्यान आलोचना समाधि परम भक्ति आदि सम्यक सत्क्रिया ने निर्विकल्प क्रिया ने, सम्यक सत्क्रिया का अर्थ क्या किया, निर्विकल्प क्रिया, निर्विकल्प क्रिया क्या होगी साहब मिलिंद भाई? हाँ आत्मा में आत्मलीनता, बराबर आत्मा अंतरंग में स्थिरता, तो वो सत्क्रिया सम्यक सत्क्रिया निर्विकल्प क्रिया ने सूत्रधारे आमा कहेल छे, आ रीते परमागम्मा वर्णन छे। हवे मुनिवर कहे छे अलम अलम अति विस्तरेन अति विस्तार थी बस थाओ बस थाओ। स्वस्ति साक्षात अस्मय विवरणाय, साक्षात आ विवरण जयवंत वर्तो, एम के पाठ नु एटले गाथा नु जे विवरण विस्तार स्पष्ट टीका थाय छे ते जयवंत वर्तो, अर्थात ए भाव जे कहिए छे ते वस्तु एटले भाव नित्य रहो जयवंत रहो। अभी ये तो कल ही लेंगे, अभी हम दो तीन मिनट है, किसी के कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना, कि ऐसा नहीं हो कि हम ही बोले और आप चुपचाप बैठे। नहीं नहीं,
भव्य हुआ नहीं जाता,
होता है
भव्य अनादि से ही होता है, रहता है वो भव्य, भले वो मोक्ष जाए या न जाए, अनादि अनंत वो उसका, जब मोक्ष जाए तो वो तो भव्यत्व से पार, यानी भव्य हो चुका, जिसको भव्य सिद्ध, सिद्ध होने योग्य, सिद्धों को भव्य नहीं कहते, परंतु ये जो भव्यत्व या अभव्यत्व है वो अनादि से ही उस जीव में है, किसी कर्म के कारण नहीं है।
देखो हमने पांच भाव देखे थे, उसमें पारिणामिक भाव देखा था, ये सारे हमने पांच असाधारण भाव देखे थे, वो डिटेल में देखे थे, उसका नंबर कितना आता है साहब?
पांच
असाधारण भाव के हमने पेटा भेद जो देखे थे, तो सबकी टोटल कितनी है? 53। उसमें पारिणामिक भाव के कितने देखे थे? 3। तो ये पारिणामिक भाव, ये द्रव्य द्रव्य स्वभाव है मतलब, और बाकी जो है पर्याय की बातें हैं, तो ये द्रव्य में ही ऐसी निसर्गतः ऐसी व्यवस्था है कि उसके भी तीन भेद किए ना, जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व, तो जीवत्व तो सब में होगा ही होगा, लेकिन कई में भव्यत्व होगा और कई में अभव्यत्व होगा, ये स्वभाव भाव कहो या द्रव्य स्वभाव होने के कारण उसे कोई भी किसी भी कर्म की कोई भी अपेक्षा नहीं है। बाकी जो औदयिक भाव है, औपशमिक भाव है, क्षायिक भाव है, क्षायोपशमिक भाव है, इसमें कहीं ना कहीं कर्मों की अपेक्षा लगती है, यानी कर्मों का सद्भाव या अभाव, तो कर्मों का अभाव किसमें लगेगा, कौन से भाव में? क्षायिक भाव में, ख्याल में है ना? वैसे ही परिणामिक भाव में कोई नहीं लगता, वो तो है बस ऐसा है, क्यों? अहेतुवाद। चलो अब आगे, हाँ जोर से हाँ पक्का पक्का बिल्कुल, यानी जिसको सम्यक दर्शन हुआ है वो तो सर्टिफाइड है।
एक बार होकर गिरा और फिर मिथ्यात्व में आए तो भी वो भव्य है डेफिनेटली, क्योंकि एक बार हुआ है ना सम्यक, यानी उसने वो प्रूव हो गया उसका भव्यत्व।
घबराने का कारण नहीं है, देखो सुनना, अभव्य कितने विषयों में तो कहते हैं अनंत है, लेकिन उससे भी अनंत गुना भव्य है, तो आप उन मेजोरिटी में रहना, क्योंकि अनंत अनंत सिद्ध हुए हैं। सुनो, वो तो भव्य थे ना पहले, तो वो तो गए, अभी कम हो गए क्या? नहीं, ये जो जीवों की जो संख्या है वह अक्षय अनंत है, ख्याल में है? ऐसे निगोद में भी कितने नित्य निगोद में कितने भव्य जीव पड़े हुए हैं, नित्य निगोद में, तो बाहर क्या है वो भी तो हो सकते हैं, उसमें क्या है? तो ऐसा नहीं सोचना कि अरे मैं हूं तो हाँ चलो अभी कुछ प्रश्न है नहीं ऐसा समझकर जावाणी के ज्ञान तै सूझे लोकालो सोवाणी मस्त कणमो सदा दे तोड़ो। बोलो
बोलो जिनवाणी माता की जय।